सिमरन में संकल्प बाधक बनते हैं, उनसे कैसे बचा जाए? थोड़ा विचार करके देखो कि संकल्प किस चीज के उठते हैं। आपका कोई काम पेंडिंग है, उस काम के कारण आपका नुकसान हो रहा है या मन विचलित हो रहा है, तो जब सिमरन में बैठोगे तो स्वाभाविक रूप से उसके संकल्प आएंगे आपके मन के अंदर। ऐसे ही कोई प्रिय है आपका, यदि आपसे बिछुड़ गया है तो उसके साथ जो प्रेम था, उसके साथ जो रहकर सुख मिलता था, अब नहीं मिलता वो। इसलिए स्वाभाविक रूप में आपके मन के अंदर संकल्प उठेंगे। किसी ने आपका अपमान कर दिया, आपको बड़ा बुरा लगा, तो जब सिमरन में बैठोगे तो उसके संकल्प उठेंगे। जो जो चीज आपको बहुत जरूरत महसूस होती है, जिसकी नहीं मिल पा रही है, उसके संकल्प आपके मन के अंदर उठेंगे। कोई चीज बहुत अच्छी मन को लग गई है, खाने में स्वादिष्ट लग गई है या देखने में बड़ी सुंदर लगी है, उसके संकल्प उठेंगे। आपने किसी पे बड़ा क्रोध किया है, उसके संकल्प आपके मन में उठेंगे। कहने का तात्पर्य यह है, जो कुछ भी आपने तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर कोई भी काम किया है, सबके संकल्प आपके अंदर उठेंगे। और यदि तीव्रता की बात नहीं भी है, साधारण रूप में भी जहाँ जहाँ आपका मोह है, जहाँ जहाँ आपकी इच्छा पूर्ति की संभावना है या जहाँ जहाँ आपकी इच्छा पूर्ति में रुकावट है, उन सबके संकल्प उठेंगे। तो ये पूरा का पूरा संकल्पों का सागर है। एक एक करके इस पर आप कभी भी रोक नहीं लगा सकते। किस किस बीमारी का इलाज करोगे, किस किस इच्छा का इलाज करोगे? कोई इच्छा आपके अंदर नहीं भी है, प्राकृतिक चक्र ऐसा है कि आपके अंदर किसी सुखी मनुष्य को देखकर ईर्ष्या पैदा हो जाती है, किसी गुणवान मनुष्य को देखकर जिसका नाम होता है संसार में लोग, उससे आपको ईर्ष्या पैदा हो जाती है। देखो मुझे तो कोई पूछता नहीं है, इसकी कैसी पूजा हो रही है। इच्छा कोई भी नहीं है, इसको मत्सर कहा गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर षटरिपु कहे गए इनको। तो इन छह शत्रुओं के प्रभाव के कारण या छह दोषों के प्रभाव के कारण मेरे अंदर जो है हजारों तरह के संकल्प उठते हैं, विचार तरंगे उठती हैं और मन उसकी उसके चिंतन में लगा रहता है। जिस समय जागृत हालत में होते हैं उस समय हमको नजर नहीं आता, लेकिन कभी भी आप जरा रुक कर देखो मन की हालत, खुली आंख से निरंतर विचार प्रक्रिया मन के अंदर चल रही है, और सारा का सारा विचार वो सांसारिक विचार है। 20 साल बाद की प्लानिंग हो सकती है इसमें, बच्चा भी 2 साल का है, उसके भविष्य तक की चिंता आपके अंदर हो सकती है, या वर्तमान चिंता भी हो सकती है। अनंत ऑब्जेक्ट्स हैं, अनंत वस्तुएं हैं जिसका चिंतन आपके मन के अंदर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। जिसको महाजी कह रहे हैं कि जिस प्रकार पानी को मीन मनन करती है, मीन का मतलब होता है मछली, पानी मछली का जीवन है, उसके बिना वो एक मिनट भी रह नहीं सकती। तो जो उसका जीवन है तो मछली उसके मनन को कैसे रोक सकती है, उसको निरंतर याद आएगी। इसी प्रकार ये जो संसार है, संसार के लोग हैं, संसार के पदार्थ हैं, ये हमारा जीवन है, इसके लिए हम जी रहे हैं। तो जिसके लिए हम जी रहे हैं, जिस पर हमारा जीवन निर्भर कर रहा है, उसका चिंतन मन में कैसे रुक सकता है? ये निरंतर चलेगा, नॉन स्टॉप चलेगा, जब तक आप गहरी नींद में सो ना जाए, इसको सुषुप्ति कहते हैं। हल्की नींद में सोए तो वहां भी चिंतन चलेगा, जो स्वप्न के रूप में प्रकट हो जाएगा, दृश्य के रूप में प्रकट हो जाएगा। तो ये उसी प्रकार नॉन स्टॉप प्रोसेस है, अविरल गति से ही चलता रहता है। जिस प्रकार समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ तो अविरल गति से निरंतर लहर उठती रहती है, किनारे से टकराती रहती है, और ये प्रोसेस 1 सेकंड के लिए भी 100 वर्ष खड़े रहो बंद नहीं होगा। तो मेरे मन की भी यही गति है। अब जब आप सिमरन करने बैठते हो तब आप प्रभु की याद करना चाहते हो, प्रभु तो फिजिकली आपके सामने उपलब्ध है नहीं, लेकिन शास्त्र हमको सिखाते हैं, गुरु हमको सिखाता है। गुरु मंत्र जो है ये प्रभु का अवतार है, ठीक उसी प्रकार अवतार है जिस प्रकार बर्फ पानी का अवतार है। बच्चे से कहो तो कहेगा बर्फ अलग चीज है, पानी अलग चीज है। किसी बड़े व्यक्ति से कहो वो कहेगा बर्फ पानी एक ही चीज है, पानी बर्फ बन जाता है, बर्फ पानी बन जाता है। तो सतपुरुष कहते हैं प्रभु को कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन प्रभु के अवतार को पकड़ सकता है, प्रभु की मैनिफेस्टेशन को पकड़ सकता है। तो जिस प्रकार बर्फ पानी का मैनिफेस्टेशन है, पानी का अवतरण है, उसी प्रकार मंत्र जो है वो प्रभु का अवतरण है। इसलिए उस मंत्र का निर्माण प्रभु करते हैं, मनुष्य नहीं कर सकता, मंत्र की रचना मनुष्य नहीं कर सकता। जिस प्रकार महाराज जी को समाधि में महामंत्र प्रकट हो रहा है, प्रकट होने का मतलब अनुभव हो रहा है, तो महाराज जी जानते हैं कि प्रभु मंत्र रूप में अवतार ले रहे हैं। महाराज जी को भी नहीं पता क्यों, लेकिन जब 3 दिन के अंदर वो पूरा मंत्र प्रकट हो गया, उसके बाद वर्षों बाद एक दिन भगत जी ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी जब भी कोई वाणी प्रकट होती है, जब भी कोई अच्छा काम होता है या कोई लिखते हैं तो आप कहते हो पहले महामंत्र उच्चारण करो या महामंत्र लिखो, उसके बाद बाकी काम शुरू होता है। तो इस महामंत्र की क्या महिमा है? अब भगत जी ने तो प्रश्न कर दिया महाराज, ये शाहपुर कंडी की बात है। खैर उसके बाद भगत जी चले गए महाजी के लिए पानी लेने के लिए, चाय बनाने के लिए। लौट के आए तो महाराज ने एक पर्चा भगत जी के आगे रख दिया जो इस महामंत्र महिमा की वाणी है। तो सत्पुरुष समाधि में भी आंख बंद करके भी वाणी उसकी आ सकती है, खुली आंख है तब भी आ सकती है, क्योंकि वो सहज समाधि में होता है। आंख खुली है तब भी समाधि में, आंख बंद है तब भी समाधि में, इसलिए उसकी स्थिति को सहज समाधि कहा जाता है। तो वो वाणी आज समतापराल ग्रंथ में लिखी हुई, क्योंकि सारी वो वाणी कंपाइल करके पूरा ग्रंथ यही सिद्धखंड में महाराज ने साइन किया था। तो विचार करने की बात यह है कि मेरा स्वभाव क्या है, मेरा जीवन क्या है। जिस समय मैं सिमरन करने बैठता हूं तो मुझको पता है मैं नॉन स्टॉप संसार का सिमरन करता रहता हूं। संसार की किसी बात का भी, किसी मनुष्य का भी सिमरन करते हो वो संसार का ही सिमरन कहलाता है। मैं नॉन स्टॉप बीच में मतलब कि 5 सेकंड का भी गैप नहीं होता, समुद्र की लहर की तरह से नॉन स्टॉप मेरी थिंकिंग, नॉन स्टॉप मनन, नॉन स्टॉप चिंतन चलता रहता है, संसार का चिंतन। अब संसार का चिंतन करके, क्योंकि मुझको मानसिक क्लेश होता है, बेचैनी होती है, चैन नहीं मिलता, इसलिए सत्पुरुष कहते हैं इसका एक इलाज है तो ईश्वर का चिंतन कर। जब ईश्वर के चिंतन की बात करते हैं तो सबसे पहले वो ईश्वर का महत्व क्या है वो बताते हैं। ईश्वर का चिंतन करने से शांति कैसे मिलती है वो बताते हैं, उसके लिए सत्पुरुष अपना जीवन पेश करते हैं। वो लाइव एग्जाम्पल है सत्पुरुष का जीवन कि 10 शिष्य महाराज के चारों तरफ घेरे हुए बैठे हुए हैं, उनके बीच में रहते हुए महाराज अंतर्ध्यान है। ना प्रेमियों का उनको कोई होश है, ना संसार का कोई होश है, और अटल समाधि लगी हुई है। उसका प्रभाव इतना है कि प्रेमी खुद कहते थे जब महाजी के पास बैठे होते थे तो ये श्वास इतनी हल्की हो जाती थी, ये पता ही नहीं लगता था कि श्वास हमारी चल भी रही है नहीं चल रही, एकदम शांति हो जाती थी। महाजी कुछ भी नहीं बोलते थे तब भी वहां से हिलने को मन नहीं करता। तो सत्पुरुष का जीवन, सत्पुरुष का शरीर हमारे लिए लाइव एग्जाम्पल है कि अंदर कोई ऐसी चीज है जिसकी याद जब आती है, जिससे प्रेम जब होता है, तो ये सारा संसार भूल जाता है। इंसान जिस पर गहरी नींद का हमको अनुभव है, गहरी नींद में सारा संसार भूल जाते हैं, लेकिन गहरी नींद का हमको कोई अनुभव होता है या कोई चीज वहां पर अनुभव करते हैं ऐसा हमको याद नहीं होता, ब्लैंक होता है। लेकिन समाधि में ब्लैंक नहीं होता, वहां अनुभव होता है, उस समाधि का अनुभव होता है, उसको सत्पुरुष बयान करता है। और ये भी कहते हैं महाराज जी प्रेमी, हर जीव वही शांति चाहता है जो समाधि की शांति है, जहां एक संकल्प भी उठना संभव नहीं। इसका मतलब जीव की प्रसन्नता का वो ठिकाना, वो स्थान है जहां संकल्प रहित हालत है। संकल्प बंद हो जाए लेकिन होश बना रहे। संकल्प तो मेरा नींद भी बंद हो जाता है, कहां मन में संकल्प होता है। जब स्वप्न का निर्माण नहीं होता है, स्वप्न आप नहीं देख रहे होते हो, उस समय आपकी संकल्प रहित हालत है। स्वप्न देख रहे हो तो संकल्प सहित हालत है। तो वो टाइम तो हमको नींद में मिलता है लेकिन उसका अनुभव हम बयान नहीं कर सकते, अनुभव कोई नहीं हमारा, इसलिए वो अज्ञान की हालत है। लेकिन समाधि का अनुभव सत्पुरुष बयान कर रहा है, वाणी में प्रकट हो रहा है। उनके बीच में जो लोग बैठे हैं वो उसकी शांति को अनुभव कर रहे हैं, बाहर भी अनुभव कर रहे हैं, वहां से हिलना नहीं चाह रहे। इसका मतलब सत्पुरुष जो बात कह रहा है वो हवाई बात नहीं है उसकी, वो अनुभव की बात है। तो संसार का हर जीव, संसार का हर मनुष्य वही अटल शांति चाहता है जो मन के संकल्प रुकने पर प्राप्त होती है। मन का संकल्प जब रुक जाता है, संकल्प का उठना बंद हो जाता है और तेरा तेरा होश बना रहता है, कॉन्शियसनेस बनी रहती है, चेतना बनी रहती है, तो उस अनुभव को शांति कहते हैं, उस अनुभव को आनंद कहते हैं, उस अनुभव को जीव की बंधन रहित हालत कहते हैं। तो सत्पुरुष ने वो स्थिति प्राप्त की है। दुनिया के जितने भी सत्पुरुष हुए हैं, जितने अवतार हुए हैं, सबने उस स्थिति को प्राप्त किया है। इसलिए दुनिया का कोई भी मनुष्य, किसी भी सेक्ट को मानने वाला हो, किसी भी सो कॉल्ड धर्म को मानने वाला हो, लेकिन उन धर्म के जो सही रूप में ज्ञाता थे या जिनके द्वारा वो प्रकट हुआ, तो उनको हम अवतार कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, पीर पैगंबर कहते हैं, सदगुरु कहते हैं। तो सारी दुनिया उनको याद जरूर करती है, उनको नहीं भूलती। वो पूजा करे ना करे, लेकिन दिल में श्रद्धा उनके प्रति रहती है। दुनिया का कोई भी देश गिनो, क्यों रहती है? क्योंकि ये मेरी अपनी चीज है, मेरे अंदर की चीज है। उस अमृत को, अंदर के अमृत को जिसने पान किया है, वो कितना शांत था और वो कितना ज्ञानी था। ज्ञानी का मतलब उसकी बात ऐसी होती थी कि हर जीव को लगता है कि यदि ये मैं जीवन में अपना लूं तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा, लेकिन वो हिम्मत नहीं करता उसको अपनाने की, क्योंकि कुछ त्याग करना पड़ता है। लेकिन उसके अंदर इच्छा उठती है कि मैं अपना लूं तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो ये स्वाभाविक, आप देखिए कि गति है, आपकी स्वाभाविक गति है, लेकिन कभी हम इसको रुक कर सोचते नहीं इसके बारे में। तो इसलिए जब किसी पूर्ण गुरु से भेंट होती है या उस पर मेरा विश्वास आता है, उसके जीवन पर श्रद्धा आती है, तब मैं उसकी बातों पर सोचना शुरू करता हूँ, उसकी बातों की इंपॉर्टेंस समझता हूँ, सुनने की कोशिश करता हूँ, अध्ययन करने की कोशिश करता हूँ। जब बारीकी से उसको मैं सीखता हूँ, दिल से समझने की कोशिश करता हूँ, तब मुझको ये बात हर सत्पुरुष के द्वारा सुनने को मिलती है या पढ़ने को मिलती है उसके द्वारा, कि हर सत्पुरुष सिमरन की बात करता है, मेडिटेशन की बात करता है, ईश्वर की प्रेम से याद करो ये बात करता है। तो करें कैसे ईश्वर की याद? तो जो पूरी दुनिया में एक यूनिवर्सल सिस्टम है ईश्वर की याद करने का, वो है नाम का सिमरन या मंत्र का सिमरन। इसको रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं कि संध्या गायत्री में लीन होती है और गायत्री प्रणव में लीन होता है और प्रणव ब्रह्म में लीन होता है। संध्या का मतलब जितनी भी हजारों तरह की उपासना दुनिया में फैली हुई है, जिस क्रिया के द्वारा हम ईश्वर की याद करते हैं, हजारों पद्धतियां, इस सबको एक कॉमन वर्ड यूज किया जाता है संध्या। और संध्या का जो क्यों नाम पड़ा संध्या, ये संधि काल है। दो संधि होती हैं, जीव का ईश्वर के साथ मिलना, ये संधि है, अंधेरे का उजाले के साथ मिलना, ये संधि है। जब प्रातः होने वाली है, रात्रि जाने वाली है, तो ये उजाले का और अंधेरे का जो पीरियड होता है, ये संधि काल होता है। ऐसी शाम को भी होता है। इसलिए आप देखिए सारी दुनिया में जो प्रभु उपासना का बेस्ट पीरियड है वो संधि काल है, इसलिए इसका नाम ही संध्या पड़ा। दो वक्त की पूजा, ये वैदिक काल से चली आई है, संधि काल में। तो जब प्रकृति में संधि होती है तो अंदर भी संधि होनी चाहिए, अर्थात जीव का प्रभु का मिलन होना चाहिए। ये उपासना का वक्त है, भोग विलास का वक्त नहीं है। लेकिन आजकल तो वक्त बदल गया, उस संधि काल में लोग पैसा कमाते हैं, शराबे पीते हैं या दुनिया के भोग विलास करते हैं, लेकिन जो होश में है वो प्रभु को याद करता है। तो संध्या वो कहते हैं गायत्री में लीन होती है, अर्थात ये जितनी भी ये शारीरिक उपासना है जो ये बाहर प्रकृति में की जाती है किसी भी रूप में करें, तो जब इससे आगे बढ़ता है वो, तो फिर वो इससे उच्च उपासना करता है जिसको वो कह रहे हैं कि संध्या गायत्री में लीन होती है, अर्थात मंत्र उपासना पे आता है, और मंत्र उपासना अंदर की जाती है, मौन होकर की जाती है, जिसको हम सिमरन कहते हैं। जैसे महाराज जी ने हमको महामंत्र दिया है जो प्रकट हुआ महाराज जी को समाधि अवस्था में, जो संत प्रकाश ग्रंथ में उसकी वाणी आई है, त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धिदाता जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाया पा, उसकी महिमा क्या है, कलह कलेश सब दूर होए पाए ज्ञान तत् योग मंगत तत् अक्षर नित गाइए प्रभु दर्शन हो से। ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ये तत् कहते हैं ब्रह्म को, तो ये अक्षर ब्रह्म रूप है, ईश्वर रूप है, मौन होकर जब इस पर ध्यान दोगे आप, इस पर ध्यान लगाओगे तो अंदर ईश्वर सत्ता प्रकट होगी, प्रभु दर्शन हो इस, तो ये ऋषियों की देन है। एक ऐसी चीज दे दी हमको, केवल उस पर ध्यान लगाना हमने, बस उसका सिमरन करना है और ईश्वर से मिलन हो जाएगा हमारा। कितना सरल तरीका, ना फूल चाहिए, ना चंदन चाहिए, ना नहाने की जरूरत है, आप जैसे हो जिस हालत में हो, जैसे संसार का सिमरन कर रहे हो हर हालत में, ऐसे प्रभु का सिमरन कर सकते हो हर हालत में। लेकिन दो वक्त की उपासना, सारे संसार से ध्यान हटाकर, सारा संसार का काम रोककर तूने केवल ईश्वर के लिए जीना है, उससे पता लगेगा कि तेरे लिए जीवन में पैसे की इंपॉर्टेंस ज्यादा है या ईश्वर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। पैसे की इंपॉर्टेंस ज्यादा है तेरी बुद्धि भ्रमित है, इसका तू बेचैनी की कमाई करने में लगा हुआ है। जो आदमी बेचैनी की कमाई कर रहा हो वह आदमी बुद्धिमान है या बुद्धू है? मनुष्य जन्म मिला है चैन की कमाई करने के लिए, इसलिए महाजी कहते हैं प्रेमी सिमरन सबसे जरूरी चीज है, सिमरन से लापरवाही करनी अपनी मूल बर्बादी करनी है, तूने अपना जन्म ही नष्ट कर दिया पूरा पूरा, मनुष्य जन्म की जड़ ही काट दी तूने, ये खत्म हो गया जीवन। जो सिमरन का पति लापरवाह रहा उसने तो मनुष्य जन्म की जड़ ही काट दी। जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य जन्म मिला था, जिस उद्देश्य के लिए ये मानव बुद्धि मिली थी, वो उद्देश्य तो तूने छुआ ही नहीं। अहंकार तेरे अंदर इतना, मैंने दुनिया में ये प्राप्त कर लिया, ये कर लिया, तो इसीलिए यदि समझ आपकी बुद्धि में ये नहीं है तो वाणी क्या कह रही है आपके लिए, दो बिना विवेक मानुष जो होई पशु समान जीवन सो कोई, ऐसे मनुष्य को पशु कह रही है वाणी, वाणी पशु कह रही है। तो ईश्वर जब हमको पशु कह रहा है तो हम कैसे बच सकते हैं, कैसे इस निर्णय को काट सकते हैं? अपने जीवन को कंपेयर करके देखो वाणी से, तुम क्या हो, तुम्हें तो वाणी इंसान भी नहीं कह रही है भैया। तो इसीलिए जब इस वाणी का स्वाध्याय मनुष्य करता है, ईश्वर वाणी का जो ईश्वर से प्रकट हुई, मानव के लिए प्रकट हुई, तब जब ये समझ उसको आती है जीवन की, जब उसी शास से ये मेरे अपने जीवन का विज्ञान समझता है कि मनुष्य जन्म जो संसारी कामों में बीतता है, संसार के चिंतन में बीतता है, संसार के भोगों में या इच्छा पूर्ति में बीतता है, वो विकारी जीवन है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से उपजा हुआ जीवन है, और वो जो जीवन है आप विचार करके देखो कि वाणी उस पर मोहर लगा रही है कि पांच विकार महा दुखदाई जले सकल संसार, परमारथ प्रतीत बिन नहीं जीव पाए निस्तारा, परमार्थ की प्रतीति के बिना, ईश्वर पर विश्वास के बिना, उस पर उस मार्ग पर चल बिना चले हुए मनुष्य जो है जलता रहता है, अंदर से जो है परेशान होता रहता है। तो जब ये विवेक, ये समझ मनुष्य की बुद्धि में आती है, तब इस बात पर वो गहराई से सोचता है, अपने जीवन को इस शास्त्र के मार्गदर्शन के अनुसार उससे तुलना करता है, तब उसको पता लगता है कि ये जो सांसारिक जीवन है, कितना भी महान क्यों ना हो, चाहे दुनिया में नंबर एक का मनुष्य मैं क्यों ना कहलाऊं, लेकिन ये विकारी जीवन है, ये विकारों की कमाई मैंने की है। जितना बड़ा इंसान दुनिया में बना हूं, उतने ज्यादा गहरे विकार की कमाई मैंने की है, ये पतित जीवन है। तो इसीलिए उसका जो ये भ्रम है ना संसारी जीवन के प्रति, ये टूटता है। तो उस मनुष्य की बुद्धि का निर्णय बदलता है कि संसार में मैं आया था चैन प्राप्त करने के लिए, जिसको हम सुख करके कहते हैं, लेकिन जो इंद्रियों का सुख है, ये तो मनुष्य के अंदर बेचैनी पैदा करता है। जो मनुष्य जिस इंद्रिय सुख का ज्यादा शौकीन है, वो शौक उसको उतना ही ज्यादा चंचल लगता है, उतनी ज्यादा बेचैन करता है, उतनी ज्यादा उसका समय बर्बाद करता है। ये खाने का ही शौकीन आदमी हो, देखो क्या अपनी जो इतना प्रिय शरीर है, इसी को बर्बाद कर लेता है। केवल एक शौक जिंदगी बर्बाद कर देता है पूरी उसकी, कितने रोग खरीद लेता वो। और जिसको ये पांचों इंद्रियों के रस लगे हो, उस इंसान की याद दुर्गति होगी। इसीलिए मनुष्य फिर पाप की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि अब उस पर कंट्रोल तो हो नहीं रहा, चाहिए उसको। तो ये जो रजोगुण है, ये तमोगुण में बदल जाता है। इसलिए महाजी समतला से लिख रहे हैं, रजोगुण तमोगुण में बदल जाता है। तो बनाया था मनुष्य, मैं पापी बनकर संसार से विदा हो रहा हूं, बनना था राम, रावण बन गया। तो राम बेचैन थे या रावण बेचैन था, युद्ध तो दोनों ने किया। कर्म करते हुए भी हमारे अंदर यही आती है कि राम तो चैन में थे, कर्म करते हुए रावण बेचैन था। तो ये विवेक, ये समझ वाणी के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, सत्संग के द्वारा जब मेरी बुद्धि में आती है, मेरी बुद्धि का निर्णय बदलता है। समझ का मतलब है निर्णय बदलता है। तो वो व्यक्ति फिर अपना इस मानव जन्म का जो कीमती समय है, वो अंतर्यामी ईश्वर की खोज के लिए व्यतीत करता है। उस खोज के तरीके को ही उपासना कहते हैं, पूजा कहते हैं। तो प्रभु उपासना में वो अधिक से अधिक टाइम खर्च करने की कोशिश करता है, और संसार में बुद्धि भ्रमित ना हो जाए, इसीलिए निरंतर वो स्वाध्याय भी करता है, क्योंकि विचार ही तो बदलेगा बुद्धि को। सत्पुरुषों की बातों का अध्ययन करता रहता है, सोचता रहता है इनके ऊपर। तो उसके अंदर ये विवेक जो है पक्का हो जाता है। जब विवेक पक्का होता है, तो इस विवेक का प्रभाव क्या होता है, बुद्धि पर क्या प्रभाव होता है, मन पर क्या प्रभाव होता है। तो जो भोग विलास संसार में कर रहा था, इनके अंदर दोष नजर आने लगते हैं। क्या क्या दोष है इसके अंदर, खान पान के दोष थे, पहनावे के दोष थे, पैसे की कमाई में दोष थे, लोक व्यवहार में दोष थे, हर चीज में दोष होते हैं। बातचीत करने में दोष थे, सारे दोष उसको दिखाई पड़ने लगते हैं। तो पहला प्रभाव सांसारिक जीवन में क्या होता है, उसका जीवन सदाचारी हो जाता है, सत आचरण वाला। तो फिर उधर विवेक स्ट्रांग हो रहा है, इधर जीवन शुद्ध हो रहा है, तो इन दोनों का प्रभाव क्या होता है? मन के अंदर राग था, अटैचमेंट था, आसक्ति थी, ये काय में बदल जाता है, वैराग्य में बदल जाता है, बेराग हो जाता है। तो फिर मन जो संसार के भोगों के लिए, संसार के पदार्थों के लिए, संसार की आसक्ति में तरसता था, ये संकल्पों की बाढ़ आती थी इसके अंदर संसार की बातों की, अब ये प्रभु को याद करना चाहता है। इसी मन के अंदर प्रभु का विचार उठता है, प्रभु का संकल्प उठता है, और यदि संसार का संकल्प बाधक बने तो उसको बड़ा बुरा लगता है। जैसे दाल में खाते समय कंकड़ आ जाए तो कितना बुरा लगता है, तो प्रभु की याद करने जब बैठता है और संसार के संकल्प आते हैं तो बड़ा बुरा लगता है इसको। फिर प्रभु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु कृपा करो, मैं तो आपकी याद करने बैठा हूं फिर भी संसार मुझे नहीं छोड़ रहा है, प्रार्थना करता है प्रभु से। फिर चिंतन करता है, फिर स्वाध्याय करता है, तो वहां सद्विचार पढ़ता है, विवेक क्योंकि पहले से है उसके अंदर, इसलिए फिर सद्विचार पकड़ लेते हैं उसके मन को, फिर इससे सहारा मिलता है उसको, फिर उसका वैराग्य जो है वो प्रबल होने लगता है। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इसकी गति हर महीने हर वर्ष बदलती रहती है। मैं यदि अपने ही मन को देखूं तो 77 में जब पहली बार यहां आया था तपो भूमि में, तो उस समय दिल्ली में डिफेंस में सर्विस करता था। उस समय जब मैं घंटा भर सिमरन के लिए बैठता था यहां पर, तो मुझे याद है शायद 5-7 मिनट मंत्र याद आता होगा, दिल्ली ही के भोग याद आते रहते थे, दिल्ली की बातें याद आती रहती थी, वही संसारी सारा संसार मन में बसा हुआ था, और खाली याद नहीं आती थी, उसमें अट्रैक्शन बहुत था। मन जब चला जाता था तो वापस ही नहीं आता था, कभी 15 मिनट हो जाते थे, कभी 20 मिनट हो जाते थे, तो होश आता था, अरे बैठे कहाँ हैं, कर क्या रहे थे, कहाँ पहुंच गए। तो उस दिन से मैं आज की तुलना करूं तो मन वही है, यदि अंदर मन की गति देखूं मैं तो मन की आज ये हालत है कि मन संसार की किसी वस्तु को लाइक नहीं करता। मुझे कोई आइटम ऐसा याद नहीं आ रहा है कि जो मन उससे अटैच्ड हो, फंसा हुआ हो उसके अंदर। मन में संकल्प आते हैं लेकिन वो जो अटैचमेंट के साथ आते थे वो अटैचमेंट गायब है। तो पहले जैसे हवा की गति आंधी जैसी थी और आज जैसे शांत हवा चल रही हो 10 किलोमीटर की स्पीड से, 20 किलोमीटर की स्पीड से, उस हवा का पता ही नहीं लगता। तो मन के अंदर अटैचमेंट का ये हालत है। तो इतने वर्षों में होश में चलते रहे तो ये चेंज दिखाई पड़ती। तो इसके मुकाबले में ईश्वर की याद बड़े प्रेम से आती है। जो समय कड़वी घूंट होती थी, ईश्वर की याद करने बैठे हैं मतलब कड़वी घूंट पी रहे हैं, आज यह है कि प्रेम से ईश्वर की याद आती है। तो मन के अंदर यह कितनी बड़ी चेंज आ गई। अभी संकल्प रहित नहीं हुआ, संकल्प रहित हो जाएगा तो वो तो समाधि की हालत हो जाएगी, लेकिन मन की क्वालिटी में कितना बड़ा चेंज आ गया इतने वर्षों में। तो ये प्रैक्टिकली जब चलकर देखा, सत्पुरुषों की बातों का स्वाध्याय किया, उस पर गहरा मनन किया, तो चिंतन मनन जब चलता रहा और जैसे जैसे हर वर्ष बीता ईश्वर का महत्व बढ़ता रहा, संसार का महत्व कम होता रहा, तो ये प्रक्रिया कोई ओवरनाइट नहीं हो जाती। आप यदि चलने वाले बनिए, महाजी ने जो सिमरन का नियम दिया कि 15 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष की आयु तक कम से कम 1 घंटा सुबह 1 घंटे सायंकाल सम्मेलन करना, 30 वर्ष की आयु से लेकर 40 वर्ष की आयु तक कम से कम 1.5 घंटा सुबह 1.5 घंटा सायंकाल सम्मेलन करना, 40 वर्ष से 60 वर्ष की आयु तक 2 घंटे सुबह 2 घंटे सायंकाल सम्मेलन करना, 60 वर्ष से ऊपर अधिक से अधिक सम्मेलन करना। अर्थात तेरे जीवन का लक्ष्य ये बन जाए कि ईश्वर प्राप्ति के अलावा और किसी काम के लिए संसार में नहीं आया हूँ। तो यदि तूने गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार प्रगति की है, उन्नति की है, तुझे मन की हालत का पता लग जाएगा क्यों गुरु ये बात लिख रहा था। तो ये जो मंत्र का सिमरन है, ते अंदर प्रभु शक्ति जब प्रकट होती है तो उस शक्ति का अनुभव में बदल जाता है। तो ये सिमरन तेरा ध्यान में बदल जाता है, वो ध्यान की स्थिति। ईश्वर का प्रभाव, ईश्वर का आनंद अंदर प्रकट है। तो अब उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे कहीं दूर में बांसुरी बज रही हो, तो उसका ध्यान चला जाता है। बांसुरी के गायन पर, बांसुरी के राग पर उसका ध्यान चला जाता है। ध्यान जब राग जाता है तो बांसुरी के आवाज़ का, बांसुरी की म्यूजिक का उसको आनंद अनुभव होता है। तो ध्यान की स्थिति ऐसी ही होती है, अंदर भी ईश्वर का आनंद, ईश्वर की शक्ति प्रकट होती है, उसका अनुभव जब होता है तो उसका ध्यान उसमें लगता है, तो वो प्रभु सिमरन में आनंद की स्थिति है। तो ये गहरा होता रहता है, गहरा होता रहता है, अंत में जाकर ये फिर समाधि में बदल जाता है। तब पता लगता है, हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपकी बात मानकर मैं धन्य हो गया, मुझे आपने कहाँ पहुंचा दिया। तब गुरु का धन्यवाद करता है, ईश्वर का धन्यवाद करता है। फिर उसको पता लगता है कि संसार में कैसा जहर घुला हुआ है, ये सारे इंसान इस जहर को पी के कैसे लड़ रहे हैं, कैसे एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, कैसे ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, वास्तव में ये जल रहे हैं। तो इसलिए उसका मन करता है कोई मेरी बात मान जाए, मेरी बात सुन ले तो अच्छी बात है, इनको भी कुछ चैन मिल जाएगा। तो प्रभु भक्त ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, उसके अंदर की एक इच्छा होती है कि किसी प्रकार इस बात को समझ लें, इनको भी चैन मिल जाएगा। तो इसीलिए बेचैन ना हो, ये प्रक्रिया लंबी है लेकिन ऐसी प्रक्रिया है जो मौत के साथ भी खत्म होने वाली नहीं। ये सारी कमाई आपकी बचपन से ही आपको मिलती है, जो यहां से कमा के जाते हो, जैसे महाराज जी को बचपन से ही मिली। तो इसीलिए संसार की जो एजुकेशन आपने प्राप्त किए, संसार में जो धन अर्जित किया है, ये तो सब खाक हो जाएगा यहीं की। नया जन्म जब मिलेगा फिर ABCD पढ़नी पड़ेगी, नया जन्म मिलेगा जब फिर 1 रुपये से कमाई करनी शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन ये वो कमाई है जो मन के अंदर ही सुरक्षित रहती है, जीव के साथ ही सुरक्षित रहती है, क्योंकि ना मन की मृत्यु है ना जीव की मृत्यु है। और जीव और ईश्वर कभी अलग नहीं होते, जीव और मन कभी अलग नहीं होते, ये मन जीव और ईश्वर हमेशा एक साथ रहते हैं। शरीर लकड़ियों पर जला भी दिया जाए ये तब भी अलग नहीं होते। तो इसी मन के द्वारा नई देह की रचना हो जाती है, फिर जो स्वभाव इस जन्म में आपने बनाया है वो बचपन में रेडीमेड मिलता है, जो प्रेम ईश्वर से किया है वो बचपन से रेडीमेड मिलता है, बिना शास्त्र पढ़े होता आपके अंदर प्रेम। तो इसीलिए जिसने विवेक धारण किया है, शास्त्रों का स्वाध्याय किया है, सत्संग सुनकर सही मनन किया है, वो अपने कीमती वक्त को ईश्वर में जरूर लगाता है, वो गुरु की बात मानता है। आज ही कहते हैं प्रेमी समय सीमा बांधकर स्वार्थ में भी लगा और परमार्थ में भी लगा, परमार्थ ज्यादा कीमती है इसका ध्यान रख। ईश्वर प्राप्ति के लिए जीवन मिला है, प्रभु के सिमरनकार ने ये दुर्लभ जीवन पाए। हम संसार में जीवन की सफलता समझते हैं लेकिन वाणी कुछ दूसरी बात कह रही है, मनुष्य जन्म सफल होवे जब प्रभु दाता अच्युत आए, प्रभु के सिमरनकार ने ये दुर्लभ जीवन पाए। तो यदि ये बात मैं कर रहा हूं तो मेरी बुद्धि में विवेक है, सही समझ है जिंदगी की, तो ऐसे मनुष्य का मन स्मरण में लगेगा ही लगेगा। हर वर्ष जीवन का जैसे जैसे बीतेगा वो देखेगा कि उसका ध्यान गहरा होता जा रहा है, संसार के प्रति झुकाव कमजोर पड़ता चला जा रहा है, और इस प्रकार उसको फिर कंप्लेंट करने का अवसर नहीं मिलता कि स्मरण करने बैठता हूं तो मन लगता नहीं। जरूर मन लगेगा, लेकिन ये ना सोच लें कि संकल्प रहित मन हो जाएगा, वो भी होगा, लेकिन वो पता नहीं इस जन्म में होगा या अगले जन्म में होगा। लेकिन मन की जो पकड़ है संसार की वो बहुत कमजोर पड़ चुकी होगी, आप खुद देख सकते हैं इसको। ओम ब्रह्म।